ओम शांति। आज की मुरली का हम सभी रिवीजन करेंगे और मुरली के आधार पर ही हम बीच में आप सभी भी चिंतन करेंगे और एक दो पॉइंट जिसको जो अच्छा लगेगा बताएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि मुरली कैसे सुनना चाहिए। कौन बताएगा मुरली कैसे सुनना चाहिए? हाँ बताइए। और भाई जी बताइए। हाँ क्या कर रहे थे आप? भाई साहब आप ठीक। हाँ जी बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत। हाँ जी हाँ जी। और कोई गॉडली स्टूडेंट बनकर, तो फिर जब इतना हमको स्मृति में रहता है तो मुरली सुनते समय कभी कभी नींद आती है, झुटका जैसा आता है। आता है कभी? कभी नहीं आता, कभी कभी आ जाता है। तो क्यों आ जाता? नींद पूरी नहीं होती इसलिए, नींद पूरी नहीं होती इसलिए, है ना? कहते हैं किसी को नींद ना आए तो मुरली सुनाना शुरू कर दो, उसको नींद आ जाएगी, जिसको नहीं आती हो, है ना? तो ऐसे यहाँ एक भाई हैं, तो वो मुरली में बहुत झुटका उनको आता है। तो किसी ने पूछा कि आप तो मुरली सुनते हैं तो आपको तो नींद आती रहती है, आप झुटका लेते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि वास्तव में मुरली मैं ही सुनता हूं। तो वो कैसे? तो उन्होंने कहा देखो गायन है ना, कि जब भगवान शिव पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे तो पार्वती सोती थी और कबूतर सुनते थे। तो उनके कहने का मतलब था कि जो सुनते हैं वो कौन है और जो सो रहे हैं वो कौन है। तो अपने को सही साबित करते हैं वो, है ना? तो इसीलिए मुरली कैसे सुने, बाबा ने जो बताया है, बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में बताया है, अव्यक्त मुरली है उसके ऊपर, कि मुरली कैसे सुने। बाबा ने बताया कि जब आप मुरली सुनते हैं ना तो मुरली के साथ ही साथ अनुभव करते जाओ। अनुभव करते जाओ मीन्स देखते जाओ, है ना? उसको फील करो, देखो आंखों के सामने। हाँ, इसीलिए आजकल क्या कहते हैं कि कोई भी चीज रखते हैं ना आजकल, तो एक साथ तीन चार काम करते हैं ना। तो जैसे मान लीजिए आपके पास की है या कोई चीज है, आप कुछ काम कर रहे हैं और हाथ में कुछ और आ गया तो उसको रख दिया आपने और आप बिजी हो गए, फिर बाद में भूल जाता हमने कहाँ रखा। क्यों? क्योंकि रख दिया, देखा नहीं। इसीलिए कहते हैं कोई भी काम बहुत ध्यान से करो। तो चाबी भी रख रहे हैं या कोई भी वस्तु रख रहे हैं ना, मोबाइल रख रहे हैं या चाबी रख रहे हैं या कोई भी वस्तु, तो जहां रख रहे हैं ना उसको एक बार देखना चाहिए रखते समय ही देखना है। तो देखने से क्या होगा, आपको कभी भूल भी जाएगा ना मैंने कहाँ रखा था, तो इतना याद आएगा कि मैंने यहाँ रखा था, क्योंकि आपने देखा है ना ध्यान से। तो इसलिए कोई भी चीज जब रखते हैं तो एक बार देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि तो मुझे पता ही ना मैंने टेबल पर रख दिया, वो भूल जाएगा, बहुत बार ऐसा होता है। तो इसीलिए कहते हैं बाबा कि जब आप मुरली भी सुनते हैं ना तो अनुभव करो। अनुभव करो मीन्स देखते हुए जाओ। जैसे बाबा ने मान लो कहा अमरनाथ, अमरनाथ कहा ना, तो अमरनाथ केवल सुन के छोड़ नहीं दो। अमरनाथ, अमरनाथ मीन्स उसको देखो, अमरनाथ कहाँ है, कैसा है। चित्रों में तो देखा होगा ना या न्यूज आदि में, कैसा, उसको देखो अमरनाथ। मधुबन शब्द आता है, देखो। परमधाम बाबा ने कहा तो तुरंत परमधाम दिखाई दे। तो केवल शब्द नहीं सुनना है, जो भी सुन रहे हैं ना उसको देखना है। अभी किसी को कहानी सुनाया जाएगी, चलो आपको एक कहानी सुनाते हैं, तो एक जगह कहानी सुनाओ और दूसरी जगह कहें मूवी दिखा जाएगा तो लोग कहाँ ज्यादा जाएंगे, कहानी सुनने या मूवी देखने? क्यों? इजी है ना, उसमें क्या होता है कान भी बिजी, आंख भी बिजी, सब कुछ बिजी हो जाता है। तो जितनी कर्मेंद्रियां एक साथ बिजी होंगी ना, उतना उस पर इफेक्ट पड़ता है ना। कहानी में केवल कान बिजी है ना, तो कुछ और भी सोच रहे हैं, कान बीच की लाइन मिस हो जाती, अच्छा क्या बताया था इन्होंने, याद ही नहीं कहानी है ना, क्योंकि कान केवल बिजी है ना। तो इसीलिए जब मुरली सुनते हैं तो मुरली उसके साथ ही साथ क्या करना है, अनुभव यानी देखना है। बाबा ने कहा परम धाम, तो परम धाम कैसा है उसको देखे। परम धाम कैसा है कौन बताएगा? परम धाम का कलर क्या है? हाँ, कौन बोल रहा है कि लाल रंग, लाल कौन बोल रहे, लाल सुनहरा, और कोई बोल रहा है लाल रंग, लाल रंग कौन कहता है कि परम धाम लाल है, कोई लाल की तरफ नहीं है, तो परम धाम कैसा है? हाँ बहुत बढ़िया। और अगर लाल रंग हो गया केवल तो उसको क्या कहेंगे? अगर केवल लाल रंग है तो उसको क्या कहेंगे, कौन सी पूरी कहेंगे? शंकरपुरी है ना, शंकर का जो निवास है ना शंकरपुरी, उसको क्या कहते हैं? लाल रंग। लाल रंग मीन्स केवल जैसे सन्नाटा जैसा ना, जैसे तपस्वी है ना तपस्या का सन्नाटा। और परम धाम कैसा है? सुनहरा लाल, लाल है लेकिन गोल्ड जैसे होता है ना, जैसे मिक्सचर टाइप का। तो यह है परम धाम का अंत। तो परम धाम में क्या है, उसके साथ अनुभूति भी है ना, केवल सन्नाटा नहीं, उसके साथ जैसे समझ जैसा दिखाएंगे, है ना। तो ये अंतर है। तो ऐसे जब भी बाबा कहते हैं ना, है ना, तो उसको फील करना है, उसको देखना। अच्छा हमने वो नहीं किया क्या? जब भी मुरली सुनते हैं उसके साथ साथ देखते रहें और अनुभव करते रहें। ऑटोमेटिक जब देखेंगे तो ऑटोमेटिक अनुभव होता ही है। तो आज बाबा ने क्या कहा कि तन मन है ना, तन मन दोनों की थकावट, हाँ, तो अगर दोनों ही तरह का को स्वस्थ रखना है या उसकी थकावट मिटानी है या तन मन से थक गए तो उसके लिए शक्तिशाली याद। तो शक्तिशाली याद और कमजोर याद अंतर है क्या? शक्तिशाली याद किसे कहेंगे, किसे कहेंगे शक्तिशाली याद? शक्तिशाली याद ये कुछ समय के लिए तो ऐसे रह सकती है, लेकिन जैसा बाबा ने आज ही मुरली में बताया, क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं टूटनी चाहिए, लिंक नहीं टूटनी चाहिए। इसीलिए बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है कि लोग बहुत याद करते हैं, बहुत एफर्ट करते हैं, बट क्या हो जाता है, लिंक टूटता है तो क्या हो जाता है, या लीकेज है ना। आप कितना भी पानी भरते जाओ कोई चीज में, नीचे छेद हो तो क्या होगा, है ना। अच्छा मान लो आपका लिंक जुड़ा हुआ कनेक्शन है, बार बार कनेक्शन कट हो फिर कट हो, आप कोई चीज पढ़ रहे हैं और लाइट चली गई, फिर बार बार लाइट आए जाए आए जाए, तो आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा ना अभी कहाँ पढ़ रहे थे, तो फिर से मेहनत करना पड़ता है। तो ऐसे ही जब हम याद भी करते हैं बाबा को तो हम क्या सोचते हैं, अभी तो हमने बीज रूप अवस्था का अभ्यास कर लिया, हो गया, फिर हम क्या हो जाते हैं हल्के, अभी तो योग हो गया ना मेरा, याद कर लिया हमने, अब हम कहाँ लग गए, सेवा में या कार्य व्यवहार में लग गए। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि याद टूटनी नहीं चाहिए, याद टूटनी नहीं चाहिए मिस, उसकी विधि होनी चाहिए, कैसे बाबा को किस समय बाबा को कैसे याद करें ये भी मालूम होना चाहिए, है ना। कोई था तो उसने गुलजार दादी को बताया कि दादी मैं योग में इतनी मगन हो गई कि हमको जहां उतरना था ना मुझे पता ही नहीं था, मैं बहुत आगे चली गई, और जाके उतर गई। फिर दादी ने क्या कहा, ये यथार्थ याद नहीं है। मीन्स आपको किस समय कैसी याद होनी चाहिए ना, आप सेवा कर रहे हैं उस समय कैसी याद होनी चाहिए, बैठने को मिलता है याद के लिए आप खास बैठते हैं उस समय कैसे याद करें, है ना। तो कार्य के हिसाब से हमें याद करना चाहिए। जैसे आप सेवा कर रहे हैं तो कैसे कट कर रहे हैं, तो कार्य जैसा समय है वैसे याद करें बाबा को, है ना। जैसे कोई आप स्थूल कार्य कर रहे हैं तो उसमें क्या फील करें कि बाबा मेरे साथ है, वो भी मुझे हेल्प कर रहा है, मैं अकेला नहीं कर रहा हूं, बाबा भी मेरे साथ है, वो भी हेल्प कर, उसकी हेल्प को फील करें, है ना। तो हमेशा बाबा को ऐसे यूज करें याद के लिए। अच्छा, जब परम धाम में याद करना है कब, एकदम कब याद कर सकते हैं, जब जो कोई बहुत बड़ा कारोबार नहीं है, जहां बुद्धि नहीं लगानी है, आप बैठ गए हैं और कोई काम नहीं है आपको, तो उस समय आप परम धाम में बिल्कुल और कुछ दिखाई ना दे, है ना। तो ये हमें देखना है कि कब हमें कैसे याद करना है, ये हमें, इसीलिए बाबा कहते हैं जैसे अमृत वेला कर रहे हैं तो बाबा कहते हैं अमृत वेले साधारण याद में नहीं बैठो, पावरफुल याद में बैठो, पावरफुल याद में बैठो, है ना। अच्छा, अगर पावरफुल याद नहीं भी हो रही है तो भी बाबा कहते हैं कि छोड़ो नहीं, ऐसा नहीं कि अब योग तो नहीं लग रहा है ना, छोड़ दो चलो बाहर घूम के आते हैं, नहीं, बाबा ये भी कहते हैं कि अगर आपका की याद नहीं है तो भी क्या करो, बैठे रहो, रोज बैठते रहो, भले आपको का योग नहीं लग रहा तो आज नहीं तो कल नहीं परसों नहीं, फिर लगना शुरू हो जाएगा ना। तो छोड़ना नहीं है, आपका योग लगता है या नहीं लगता है, जो टाइम है उसमें हमें बैठना है, उस समय हमें अभ्यास करना ही है, एक मिनट दो मिनट। तो इसी प्रकार आज बाबा ने क्या बताया कि परदेशी बाप है ना, परदेशी बाप किससे मिलने आए हैं, अनादि देश और आदि देश, और सेवा के हिसाब से सेवा के हिसाब से विदेशी, और अनादि देश हमारा कौन सा है, परमधाम। तो जब बाबा ने कहा अनादि देश तो परमधाम याद आया कि केवल अनादि शब्द, तो अनादि जो ही बाबा ने कहा अनादि देश तो परम धाम दिखना चाहिए, है ना। सुनहरा लाल रंग का आकाश, बीच में बिंदु बाबा, है ना। तो ऐसे ही बाबा ने बताया योग टूटता भी कब है, जब हम अकेले याद करते बिंदु को, जब एक बिंदु को देखते हैं ना बाबा को तो योग टूटता है। इसीलिए बाबा ने बताया है एक मुरली में कि अगर आप चाहते हैं कि पावरफुल याद हो और योग टूटे नहीं तो कितने बिंदु देखो, दो बिंदु परमधाम में, दो बिंदु, और क्या देखो मुरलियों में भी कहा बाबा ने साकार मुरली में, दोनों बिंदु कैसे हैं, चिपक गए हैं आपस में, है ना, चिपक गए। तो बाबा कहते हैं कि इतने स्वीट बनो, इतने मीठे बनो जो चिपक जाओ, है ना। तो जितना मीठा बनेंगे उतना चिपकेंगे, या जितना चिपकेंगे उतना मीठा बन जाएंगे, दोनों का ये अंतर ना हो। तो इसी प्रकार हमें देखना है परम धाम जो हमारा अनादि देश है, वहां कैसी शांति सुख, वहां भी सुख है, उस सुख को हम अभी फील करते हैं ना, अतीन्द्रिय सुख, है ना, कोई इंद्रियों का सुख नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का सुख क्या है, जितना जितना समय बीतता जाता है इंद्रियों का सुख कम होता जाता है, क्योंकि इंद्रियों पर आधारित है। लेकिन जो अतिंद्रिय सुख है वो जितना समय बीतता जाएगा उतना और बढ़ता जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा किनसे मिलने आए हैं, जो हम अनादि देश में जो परम धाम में थे बाबा के पास है ना, उनसे मिलने आए। और सृष्टि में सबसे पहले कहां आए, इस धरती पर, भारत में है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि भारत जो है इतना महान है ना, इतना महान है कि दुनिया में भी जो जैसे विदेशों में भी क्या कहते हैं, कई जगह जैसे एक बहुत बड़ा विद्वान था माओ त्से तुंग, चाइना का बहुत बड़ा विद्वान था माओ त्से तुंग, तो उसने क्या कहा था मालूम है, उसने कहा था कि इस जन्म में जब कोई बहुत अच्छा कर्म करता है तो उसका अगला जन्म कहाँ होता है, भारत में, समझ सकते हैं, भारत में जन्म लेने के लिए भी बहुत पुण्य बहुत इसकी जरूरत होती। और बाबा ने क्या कहा हम बच्चों के लिए, क्या कहा कि आपका जन्म तो सृष्टि में कि शुरुआत में ही कहाँ हुआ, इस धरती माँ भारत भूमि में, और भारत भूमि भी सतयुग में कैसी थी, कितनी भरपूरता कितनी संपन्नता है ना, कितनी पवित्रता, तो उसको भी देखना है ना। तो जैसे मुरली सुना हमने, तो मुरली सुनना मतलब केवल पॉइंट रिपीट नहीं करना है, उसको फील करना है। जैसे बाबा ने कहा, बाबा ने अनादि देश, तो बैठ के देखें थोड़ा अनादि देश को, हमारा कैसा था अनादि देश, फिर सतयुग को भी देखें सतयुग में हमारा देश कैसा था, ये देवी देवताएं थे ना, तो देखना है कि देवी देवताओं का देश कैसी, देवी देवताएं उनकी पवित्रता, तो देखना उस समय कैसी है सृष्टि, प्रकृति कैसी है, आत्माएं कैसी हैं, आत्माएं कौन है, देव आत्माएं है ना, उनकी रहन सहन कैसी है, उसको फील करना है ना। ऐसे मुरली हमें सुनना, मुरली सुन लिया और फिर उसको हाँ देखना है, अनादि देखा फिर सतयुग को देखा। तो इसीलिए भारत शब्द, भारत में क्यों कहते हैं भारत, भारत का अर्थ बताएंगे, भारत क्यों कहते हैं, भामिस भाग्य, और भामिस ज्योति प्रकाश होता है, जो भा शब्द है ना ये प्रकाश ज्योति, और रत्मिस युक्त प्रकाश युक्त, तो कौन सा प्रकाश, ये अव्यक्त लाइट। तो ये कहाँ दिखाते हैं, जो देवी देवताएं होते हैं ना उनके पीछे दिखाते हैं ना, ये सिर के पास होता है ना, पवित्रता का ओरा है ना, तो जो ओरा है, तो भामिस ज्योति रत ज्योति युक्त, यानी तो ये कौन सी ज्योति, कौन सा प्रकाश, पवित्रता का, क्योंकि इस समय तो नहीं दिखाते ना, इस समय किसी मनुष्य को दिखाते हैं क्या पवित्रता का ओरा, नहीं दिखाते। तो ये कब तक रहता है पवित्रता का ओरा, सतयुग और त्रेता में, दोनों में रहता है, सतयुग और त्रेता दोनों में ये पवित्रता का। तो इसीलिए देवताओं की क्या बोलते हैं संख्या कितना कहते हैं, 33 करोड़। क्यों 33 करोड़ कहते हैं, क्योंकि त्रेता में की अंतिम जो संख्या है वो क्या है, 33 करोड़। तो भारत की जनसंख्या 33 करोड़ है त्रेता के लास्ट में, तो इसलिए कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताएं होते हैं। है ना। तो ये जो पवित्रता का ओरा है, ये कहते हैं कि जब सतयुग में 6 महीना पहले से ही पता चल जाता है कि आत्मा शरीर छोड़ने वाली है, क्योंकि ओरा थोड़ा सिमटने लगता है। एक विद्वानों का है कुछ हमने देखा इसमें, तो ये ओरा कम होने की वजह से पता चलेगा अभी आत्मा समेटने लगती है। तो इसलिए कहते हैं भारत। तो इस भारत को भी हमें देखना है कि कैसे देवी देवताएं हैं, कैसे संपन्न था, उसको देखा हमने, उसको फील करना है। ये हो गया अनुभव, है ना। तो इसमें खोना है, इसको फील करना है। सतयुग में हम कैसे थे, फिर क्या करें। सतयुग को फील किया हमने, फिर किस में आएंगे, द्वापर। द्वापर में भी आए तो क्या हो गया, हम भक्ति आरंभ किया ना हमने। बाबा ने कहा कि भक्ति सबको सिखाने वाले कौन, आप ही है ना। तो सबसे पहले हम भक्ति करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो जब भक्ति करना शुरू कर देते हैं फिर क्या होता है, मंदिर बनाना शुरू करते हैं। और इसी समय कहते हैं क्या हो जाता है, बाबा कहते हैं कि द्वैत, द्वैत जहां द्वैत दो धर्म हो गए ना, द्वैत जहां दो धर्म हो गए तो उन्हें क्या कहते हैं, दैत्य। बाबा कहते हैं द्वैत होते ही दैत्य बन जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो दो धर्म पे चलते हैं ना, दो धर्म को फॉलो करते हैं, वो बहुत डेंजरस हालत होती है। इसीलिए आज बाबा ने वरदान में कहा ना कि आपकी स्थिति क्या, कभी ऐसा तो नहीं कि कभी क्रोध का कभी लोभ का, तो आसुरी हो गया ना। तो इस धर्म पे चल रहे हैं या बाबा ने जो स्थापन किया उस पे चल रहे हैं, है ना। हमने क्रोध किया मिस, ये दूसरा धर्म पर धर्म हो गया ना, है ना, पर धर्म हो गया। तो इसलिए हमें ये देखना है कि जो ही अगर हमारी लाइफ में दो धर्म है, हम दो बातों पर चलते हैं, तो है ना। तो ये बाबा ने कहा कि द्वापर से भी हमारी गिरावट बहुत आहिस्ते आहिस्ते होती है, जिसे चोट लगने जैसी नहीं होती है, अचानक कोई गिर जाए चोट लगे, धीरे धीरे भक्ति करते हुए नीचे आते हैं, है ना। और जैसे कि बाबा ने कहा कि अभी भी भारत क्या है, धूल मिट्टी है, है ना, अपना है, अपना देश तो अपना ही होता है। और कई विदेशी भी सुनाते हैं जो यहाँ बाबा से मिलने आते हैं ना विदेशी, तो बहुत सुनाते हैं कि हम लोगों के यहाँ भले इतना संपन्नता है, सब कुछ है, लेकिन जब भारत में आते हैं ना, भले यहाँ गरीबी है लेकिन यहाँ का जो वाइब्रेशन है, यहाँ का वातावरण है, एक अलग ही है ना। ये भारत को इसलिए कहते हैं कि भारत की जो स्वभाव स्वभाव है ना, स्त्रैण है, माने माता का स्वभाव है, एक समाने की क्षमता। जो भी भारत में आया उसको क्या किया, समा लिया। यहाँ इसीलिए कहते हैं ना, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं तुम्हारी, ऐसे है ना। तो भारत में जो भी आया ना, आज आप भी देखो, आज भी आप देखेंगे पृथ्वीराज चौहान के वंशज कहाँ हैं, अभी भी आप ढूंढ सकते हैं पृथ्वीराज चौहान के। यहाँ तक कि कहते हैं कि राम के वंशज कहाँ हैं, तो वो भी मिल जाते हैं कि ये राम के वंशज हैं, अभी भी चल रहा है। लव के वंशज का सबका अभी भी भारत में पता चल जाता है कि इनके वंशज कहाँ हैं। लेकिन ये लोग कुछ सौ साल से ही हुआ, मुगल हुए चाहिए हुए, आप उनको ढूंढे उनके वंशज कहाँ हैं, कहीं पता नहीं चलता। तो भारत में जो भी आए ना, वो भारत ने उनको धीरे धीरे समझ लिया। तो ये भारत की संस्कृति रही, सबको एक्सेप्ट किया, सबको सबकी पालना किया है भारत ने, है ना। तो ये भारत की महानता रही है, इसीलिए भारत में एक अलग ही वाइब्रेशंस है। कोई भी जब भारत में आता है तो उसे फील होता है कि ये मेरा देश है, हर एक को फील होता है कि ये मेरा देश है। इसीलिए बाबा ने कहा था ना, एक मुरली में एग्जाम्पल दिया था कि जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर का एग्जाम्पल दिया, बाबा ने कहा जब काशी विश्वनाथ मंदिर जाते हैं उधर तो वो मंदिर खींचता है हर एक को, जो नहीं भी मानते ना वो भी जाते हैं। तो बाबा ने कहा क्यों क्यों खींचता है, क्योंकि बाप का मंदिर है ना, बाप का मंदिर है, तो जब वहां जाते हैं कोई ना अट्रैक्शन होता है। तो ऐसे भारत भी सारे विश्व की पूर्वज आत्माएं है ना यहाँ, तो इसलिए भारत में जब भी कोई आता है तो क्या होता है, खींच जाता है ना। तो भले गरीबी की बात नहीं है, धूल है, गंदगी है, कुछ भी है, लेकिन क्या है, दिल बहुत बड़ा है ना। डायरेक्ट भगवान के बच्चे हैं ना, तो जो भगवान के वर्च्यूज हैं, जो भगवान के गुण हैं, यहां भारतवासियों के अंदर व्याप्त है ना। तो जितना जितना हम बाबा के साथ रहेंगे, जितना जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, वो बाबा की पावर, वो बाबा के वर्च्यूज, वो बाबा के गुण हमारे में आते जाएंगे। तो इसीलिए बाबा ने एक बार गुलजार दादी ने बताया था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया था दादी ने, कि जैसे पानी है, पानी का स्वभाव कैसा होता है, शीतल ठंडा होता है, लेकिन पानी को जब आग के ऊपर रख दो कुछ समय तक तो क्या होगा, कुछ समय तक अगर आपने पानी के को आग के ऊपर रखा, आधे घंटे तक मान लीजिए रख दिया, 15 मिनट रख दिया, तो धीरे धीरे पानी क्या हो जाएगा, उबलने लगेगा, बॉयल हो जाएगा। अब उस पानी को किसी के ऊपर अगर छिड़क देंगे या फेंक देंगे तो क्या होगा, वो जल जाएगा ना। तो ये दादी ने एग्जाम्पल बहुत बढ़िया बताया था कि इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव क्या है, शांत है, शीतल शांत। लेकिन यही आत्मा जब विकारों की आग में लंबे समय तक रहती है ना, तो आत्मा कैसी हो जाती है, एकदम गर्म हो जाती है। फिर वो जब किसी से भी व्यवहार में आती है तो क्या करती है, कैसे शब्द, कैसे उसका व्यवहार, बोल चाल, सब कुछ बदल जाता है ना। क्यों, क्योंकि आत्मा विकारों के संग में रही, विकारों की जो अग्नि है उसके संग में रही, तो विकारों का जो प्रभाव है आत्मा में आ गया है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब आप याद में रहते हैं ना, बाबा की याद में रहते हैं, बाबा से आप चिपक जाते हैं, तो क्या होता है, जो बाबा जैसा है ना वैसा हम धीरे धीरे, इसीलिए ये याद की निशानी है। आप जब बहुत अच्छा योग करेंगे ना, बाबा की याद में रहेंगे ना, तो याद के बाद क्या होगा, आपको हर एक के लिए बहुत रहम आएगा, हर एक के लिए बहुत रहम, हर एक के लिए दुआएं निकलेगी। क्यों, क्योंकि हम बाबा के पास थे ना, तो बाबा के वर्च्यूज हमारे अंदर आ गए है ना। कोई गर्म चीज रखी हुई है उसके साथ ठंडा चीज रख दो थोड़ी देर, ठंडा चीज भी धीरे धीरे गर्म हो जाएगी ना, अगर गर्म के साथ रहेगी तो है ना। और ऐसा मान लीजिए बर्फ रखा हुआ है, बर्फ के ऊपर हाथ रखो, क्या होगा, कब तक रख पाएंगे, कहेंगे अभी बहुत ठंडा हो गया है ना। तो ऑटोमेटिक ही आता है, आपको ये सोचे, इसीलिए कहते हैं ना कि अगर कोई भी गुण धारण करना है ना, बस आप बाबा की याद में बैठ जाओ, ये गुण नहीं सभी गुण आ जाएंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं है कि हमको ये चाहिए। सच बात तो ये है कि ये भी कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमसे भी ज्यादा पता बाबा को है कि आपको क्या चाहिए है ना, आपको क्या चाहिए वो बाबा को पता है। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे आपको तो मांगना भी नहीं आता था कि क्या मांगे, आप छोटी छोटी चीज मांगते थे, लेकिन बाबा ने ही हमें सिखाया क्या मांगना चाहिए, है ना। कोई कहता है कि हम राम सीता बन जाएंगे, बाबा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसा नहीं लक्ष्य रखो, कैसा रखो, हम क्या बनेंगे, लक्ष्मी नारायण। तो इसीलिए एक बार बाबा ने हाथ उठवाया, हाथ उठाओ कौन राम सीता बनेगा कौन, तो राम सीता के लिए कोई भी हाथ नहीं उठाया। बाबा ने कहा कोई एक तो उठा दो हाथ किसी ने नहीं उठाया। तो देखो ये भी सिखाया किसने, बाबा ने सिखाया ना, नहीं तो पहले हम क्या सोचते थे, छोटा ही बन गए कोई बात नहीं, है ना। लेकिन बाबा ने बताया कि हम हमें बनना भी है, इच्छा भी रखनी है, तो कैसी है ना। तो इसीलिए हम जब बाबा की याद में रहते हैं तो बाबा के संग का, इसीलिए कहते हैं ना संग तारे कुसंग डुबोए। बस एक ही ये दो चीज अगर आपने याद रखा, संग और कुसंग, तो हमेशा हमें चेक करना है कि अभी जो हम हैं संग में हैं या कुसंग में। संग किसे कहेंगे, जो रूहानी संबंध है। कुसंग या किसे कहेंगे, जो देहधारी का प्रभाव है। कोई भी देहधारी संबंध है, दैहिक संबंध है, लौकिक, तो उसमें अटकने की संभावना होती है। तो इसीलिए हम ध्यान किस पर दें, हमेशा ये चेक करें कि संग है या कुसंग। तो जितना जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, स्वतः वो शक्ति वो बल हमारे अंदर आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि इसमें क्या होगा, बाबा की याद में रहने से थकावट नहीं होगी। थकावट भी क्यों हो जाती है, जब हम मन से थकते हैं, मन से थकते हैं ना, तो तन से और जल्दी थक जाते हैं, है ना। आपने बहुत सेवा किया, बहुत सेवा किया, बहुत सेवा किया, खूब सेवा किया ना, और किसी ने आके बोला आपने ये क्या कर दिया आपने, क्या कहेगा वो, इतने घंटे तक कितना मेहनत किया और ये जीरो। तो आपको जितनी थकान हुई है ना, उससे भी ज्यादा थकान हो जाएगी। अच्छा, और आपने किया और किसी ने आके कहा कि तो आपने बड़ा अच्छा किया था, हमने तो सोचा ही नहीं था कि ये भी हो जाएगा, तो क्या लगता है आदमी को, लगता है ना चलो मैंने जो किया ना इसका फल तो निकला, तो संतुष्टता आई ना अंदर। संतुष्टता क्या दे दी, सुख, हैप्पीनेस आ गई ना, खुशी आ गई। क्यों, क्यों, उसका फल दिखाई दिया ना, फल मिला। फल देखते हैं तो भी और किसके लिए हम कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा क्या भाव है, जब हम कोई भी काम कर रहे हैं उसके पीछे क्या भाव है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ड्यूटी नहीं समझो, कोई भी काम जब हम ड्यूटी समझ के करते हैं, तो बाबा ने क्या कहा, तो थकते तभी हैं जब हम ड्यूटी समझते हैं, है ना। ड्यूटी समझते हैं तो क्या सोचते हैं, हमें तो करना ही पड़ेगा, है ना, अब हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना, तो करना ही पड़ेगा ना, मजबूरी में कर रहे हैं। तो मजबूरी में कर रहे हैं तो वो थक के ही कर रहे हैं, थकेंगे नहीं बाद में, वो पहले ही थक गए हैं काम करने से पहले, तो सेवा करने से पहले ही तो थकते ही रहेंगे। अच्छा, वही किसी बच्चे को भी, जो घर में कोई छोटा बच्चा है उसको बोलो भाई आप जाओ ये थोड़ा ये लेके आना मार्केट से, चाहे कुछ भी, तो कहेगा अभी मेरे पास टाइम नहीं है। और उसी को कह दो कि भाई क्रिकेट खेलना है 2-3 घंटा, फिर उसके अंदर सारी जान आ जाएगी ना, कितना खेलेगा, फुटबॉल हो क्रिकेट हो खेलता ही रहेगा। भूल भी जाता है कई बार कि हमको भोजन भी करना है, थकान ही नहीं होते, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट हो गया, है ना, गेम में। तो जब खेल खेलते हैं ना, तो उसमें क्या है, खुशी से खेलते हैं। बाबा ने कहा ना, जब खुशी के साथ कोई काम करते हैं ना, सेवा भी जब हम खुशी से करते हैं तो नहीं थकते ज्यादा, मजबूरी से करेंगे, ड्यूटी समझ के करेंगे। तो बाबा ने कहा जैसे माया का विघ्न है, वो भी क्या है, खेल है ना, तो ऐसे इसे भी हम खेल समझे, जो सेवा है ना इसे भी क्या समझे, खेल समझे। खेल समझेंगे तो थकेंगे नहीं। और इसी प्रकार बाबा ने क्या कहा कि इसी प्रकार अगर आप याद में रह के भोजन भी करते हैं ना, याद में रह के भोजन भी करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, विटामिन ए बी सी जो भी विटामिन है ना उसमें आ जाता है भोजन में, है ना। तो बाबा की याद में रह के जब भोजन करते हैं सभी विटामिन आ गए उसमें। तो इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे मोदी जी जब नए नए प्रधानमंत्री बने थे तो एक स्कूल में गए थे तो बच्चों ने पूछा कि सर आप कभी बचपन में कोई नटखटपना या बच्चों का वो जो शरारत हो करते थे, तो उन्होंने बोला हाँ मैं करता था लेकिन मैं एक ही शर्त पर बताऊंगा कि आप लोग ऐसा नहीं करोगे, उन्होंने बच्चों से कहा। बच्चों ने कहा हाँ सर हम नहीं करेंगे। तो मोदी जी ने बताया कि हम लोग बचपन में क्या करते थे कि जो शहनाई बजाते हैं ना, तो बोले जब शहनाई बजाने आते थे हम लोगों के यहाँ एरिया में तो हम लोग क्या करते थे, उनको इमली दिखाते थे, कच्ची इमली होती है ना, तो इमली देखने से क्या हो जाता ना, आप कभी भी इमली देखेंगे ना तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा इमली जैसा, थोड़ी देर तक दिखाए ना तो इमली जैसा पानी आएगा खट्टा जैसा, तो उनके जो मुंह में पानी आ जाता था ना उससे शहनाई बजता ही नहीं था उनसे। तो वो मोदी जी बोलते थे कि वो फिर हम लोगों को मारने के लिए दौड़ाते थे फिर हम लोग भागते थे। तो अब बताओ कहां इमली कहां है, शहनाई कहां, खाया क्या वो। ये सब कमाल किसका है, स्मृति, स्मृति। वो शहनाई वाला देखा इमली अतुरंत, है ना। अब टीवी देख रहे हैं और अब मान लो उसी समय भोजन भी कर रहे हैं टीवी भी देख रहे हैं, अब कोई मार धाड़ का दृश्य चल रहा है, कोई ऐसा चल रहा है, अब क्या कहेंगे बंद करो इसे, है ना, खाया नहीं जाएगा ना। आपको कोई तकलीफ वाले दृश्य देख रहे हैं, कोई बेचारे बाढ़ आई है, कोई डूब रहे हैं, कोई कुछ हो रहे हैं, तो उसमें खाया जाएगा क्या, किसी का दुख देख रहे हैं तो खाया तो नहीं जाएगा ना, है ना। तो इसी प्रकार जब हम बाबा की याद में जैसे निगेटिव हो जाता ना, जैसे इमली देखा आपका रसा है, तो ऐसे ही जब बाबा को भी हम याद करते हैं ना तो जैसे उसमें इमली का जैसे आ रहा ना ऐसे बाबा की जो मिठास है वो हमारे आती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सभी विटामिन आ जाती है ना। मनसा में आपका मन कैसा है ना, आप खुशी से कोई भी चीज खा रहे हैं ना, खुशी से कोई भी चीज खा रहे हैं उसमें ताकत आ जाती है। उदास होके खा रहे हैं, मजबूरी में खा रहे हैं, कुछ भी खा लो, है ना। तो इसीलिए बाबा एक आधार मुरलियों में भी एग्जाम्पल देते हैं ना कि कई बार कि गरीब लोग होते हैं केवल रोटी चटनी खा लेते हैं, ताकत कितनी होती है। और कई डॉक्टर लोग होते हैं इतना विटामिन इतना प्रोटीन इतना मिनरल्स इतना ये खाना चाहिए, उनका हेल्थ कैसा होता है डॉक्टर्स का देखें। तो ये केवल मिनरल हम ये खाएंगे तो ऐसे हो जाएंगे, नहीं, आपका भाव क्या है उसके पीछे, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब भी आप भोजन करते हो तो कैसे करो, बाबा की याद में। तो जब याद में हम भोजन करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, सभी विटामिन आ जाती ए बी सी, है ना, कोई भी विटामिन ऐसी नहीं है जो रह जाए। तो इसीलिए हमें हमेशा इस बात पर ध्यान देना है कि हम बाबा की याद में रह के करें हर कार्य करें, लिंक टूटे नहीं, है ना। क्योंकि लिंक टूट जाती है ना एक बार तो फिर से एक बार जोड़नी पड़ती है। क्योंकि जब हम अमृत वेला बैठे थे, आप फील करिए अमृत वेले कितनी पावरफुल याद थी, है ना। अमृत वेला मुरली के समय भी क्या लगता है, आज हमने मुरली सुना ना इसको हम पूरा ही धारण कर लेंगे, अब इसमें कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। फिर मुरली सुन के आए धीरे धीरे, फिर जितना धीरे धीरे लेट होता गया उतना है ना। तो इसीलिए बाबा कहते भले आप साधारण याद रखो, कुछ भी रखो, लेकिन लिंक ना टूटे। तो इसके लिए हम रूढ़िहान भी करना सीखे। हम जब सेवा भी कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं ना, तो बाबा से बात करें, हम बताएं भी बाबा को, बाबा हमने ये किया, हम ये करने वाले हैं। अब भोजन भी बना रहे हैं, चाहे कोई सफाई भी कर रहे हैं, तो भी आप बाबा को बार बार बताते रहो कि मैंने इतना कर लिया, इतना कर लिया, है ना। तो इसीलिए बाबा ने एक बार कहा था कि अभी ऐसा भी समय नहीं है कि शाम को चेकिंग करूंगा। शाम को चेकिंग किया तो नहीं, शाम को आपने चेक कर लिया, मान लो चेकिंग भी किया तो क्या फायदा। रात को आप चेकिंग तो कर लिए, लेकिन अब कुछ सुधार तो संभव नहीं है ना। चेंज करने का टाइम कहाँ है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अभी कि आप बीच बीच में चेकिंग करो, जब भी थोड़ा टाइम मिले ना, 5 मिनट भी चेकिंग कर लो कि कैसा रहा अभी सुबह से लेकर अभी तक का समय, कहीं गड़बड़ी हुई तो क्या हो गई इसमें गड़बड़ी। तो चेकिंग करेंगे तो हम चेंज कर लेंगे फिर धीरे धीरे। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि जितना जितना हम चेक करेंगे और जितना जितना चेंज करेंगे ना, तो फिर चलता रहेगा। तो इसीलिए अगर याद को शक्तिशाली बनाना है तो हमेशा इस बात पर ध्यान दें कि हम किसी न किसी रूप में बाबा को याद करें, है ना। और कोई भी कार्य, कोई भी सेवा, है ना, इंजॉय करके करें। बाबा ने भी कहा कि श्रीमत, कोई भी बाबा श्रीमत भी करते हैं ना, तो उसमें सोचना नहीं चाहिए, है ना। जैसे बाबा ने कहा कि बाबा अगर कहे कि मधुबन में रुक जाओ, तो आप सोचो अगर मधुबन में रुक जाएंगे तो सेवा कैसे होगी, वहां सब कुछ छोड़ के आए, वो कौन संभालेगा। तो बाबा ने क्या कहा, सेवा किसकी, सेवा किसकी, बाबा की है। बाबा ने कहा बाबा करा सकता है सब कुछ, वो तो इसलिए आपको निमित्त बनाता है, क्यों, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा, इसके लिए। तो इसीलिए बाबा ने कहा ये ठीक है, लेकिन आपको संकल्प नहीं चलना चाहिए। बाबा ने कहा हमें सबने माना, है ना। जैसे एग्जाम्पल देते हैं ना मम्मा का, कि दो खटिया था, एक छोटी खटिया थी एक बड़ी खटिया थी। तो बाबा ने कहा बच्ची, किसी दादी को, कि ये जो बड़ी खटिया है ना, ये छोटी खटिया के अंदर डाल दो। तो उसने कहा बाबा ये कैसे होगा, ये बड़ी खटिया है छोटी खटिया, बड़ी खटिया छोटी खटिया के अंदर कैसे जाएगी। तो वही मम्मा खड़ी थी, मम्मा ने क्या कहा, तुम यो क्यों पूछ रही हो, कहा कौन रहा है तुमको, कौन बोल रहा है ऐसा करने के लिए, बाबा कह रहे ना तुम डालो बड़ी खटिया को छोटी के अंदर। तो ये है मम्मा के समर्पित बुद्धि। बाबा ने क्या कहा, है ना। बाबा इसलिए कई बार परखते थे, मुरली चलाते चलाते बाबा ने एक बार कहा बच्चे, तो हनुमान पांव जमा के खड़ा हो गया कि कोई मेरा पांव हिला के दिखाए। तो किसी ने कहा बाबा हनुमान नहीं, वो अंगद था। तो बाबा ने वही कहा कि वही कोई भी हो, अंगद हो या हनुमान हो। तो बाबा हमेशा परखते थे इस बात को। तो बाबा ने जो श्रीमत दिया उसमें फिर हमें सोचने की जरूरत नहीं है, इतना हमें समर्पित बुद्धि होना चाहिए, तब हम एंजॉय कर सकेंगे जितना समर्पित। इसीलिए कहते हैं ना, जितने आप समर्पित होते जाते हैं, जितना आप श्रीमत को एक्सेप्ट करते हैं, उतना आप संपूर्ण बनते जाते हैं। जितना समर्पित उतना संपूर्ण। इसीलिए बाबा ने कहा था संपूर्ण श्रीमत एक जगह यूज किया था। तो जितना हम श्रीमत पर चलेंगे इतना हम संपूर्ण बनते जाएंगे। तो हमेशा हमें इसे भी ध्यान में रखना है। पहले तो कोई भी कर्म कर रहे हैं उसमें हम चेक करें कि बाबा के श्रीमत के आधार पर कर रहे हैं, हम कोई भी सेवा कर रहे हैं इसमें खुशी है ना। तो इस तरह हम बार बार चेक करें। तो एक तो हो गया बाबा की याद, है ना, ये बाबा की याद के लिए हो गया। दूसरा हो गया, बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र, है ना, स्वदर्शन चक्र भी फिराना है। स्वदर्शन चक्र फिराना मीन्स ये बाबा ने ही जो हमें श्रीमत दी है ना। तो जैसे उसका हम मनन चिंतन करते हैं, उसके गुह्यता में जाते हैं, तो ऐसे स्वदर्शन मीन्स जो पांचों स्वरूप बोलते हैं ना, वो पांचों स्वरूप में जाकर के स्थित होना। जैसे मान लो आप सोचते हैं मैं दुर्गा हूं, है ना, पूज्य स्वरूप में मैं दुर्गा हूं, अगर फील करते हैं मैं माँ दुर्गा, तो कैसी दुर्गा, आप बैठ जाओ दो मिनट ही और फील करिए कि मेरा लाइट का ताज है चमकता हुआ, अपने आभूषण को देखिए, अपने चमकते हुए वस्त्र को देखिए, मेरा अंग अंग भी चमक रहा है, मेरा ताज भी चमक रहा है। इसको एक मिनट ही सही इसको देखना कि मैं माँ दुर्गा हूं। तो ऐसे जब देखते हैं बैठ के अपने सिर से लेके ताज से लेके पैरों तक अपने ड्रेस को, केवल इतना ही करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, जो आप जहां कमरे में बैठे हैं वहां माँ दुर्गा का वाइब्रेशन फैल जाता है। ऐसे ही लाइट का, मैं लाइट का क्या हूं, फरिश्ता, एंजल। तो आप फील करिए, अपना देखिए एक एक कि मेरा सिर भी लाइट का, मेरा गला, मेरा एक एक अंग लाइट का, सिर से लेके पांव तक लाइट ही लाइट। तो अपने को देखें फरिश्ते के रूप में, लाइट के रूप में। तो ऐसे एक एक मिनट, एक मिनट दुर्गा के रूप में देखा, एक बार लाइट के रूप में, फरिश्ता के रूप में। तो इससे भी क्या होता है, बाबा ने कहा है ये जो लाइट के रूप में आप फरिश्ता देखते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो ये अंत काल में आपको बहुत बचाएगा। जब चोर डाकू या कुछ ऐसे लोग आएंगे तो क्या होगा, आपको कोई देख ही नहीं पाएगा। अगर ये आपका लंबे समय का अभ्यास है ना, तो आप दिखाई नहीं देंगे उनको, उनको लगेगा यहां कोई नहीं, चले जाएंगे ऐसे ही। तो बाबा ने इसे लिखा है, इसका अभ्यास अभी से करो और आपकी थकान खत्म हो जाएगी। अब कुछ देर भी ना, अगर फरिश्ते के रूप में रहे, कभी देवता के रूप में बैठ गए, मैं देवी देवता हूं, सतयुग में चले गए, सतयुग में आप देखें महल कैसे हैं, प्रकृति कैसी है, नदियां कैसी है, देवी देवताएं कैसे, उसको फील करना, बैठ गए आप वहीं जैसे आप चले गए, स्मृति में लाना। इसको स्मृति कहते हैं, एक कल्पना होता है, कल्पना नहीं स्मृति, क्योंकि हमारे अंदर भरा हुआ है, क्योंकि हम लोग तो कोई एक जन्म तो भारत में नहीं रहे ना, है ना, सतयुग में भी कितने जन्म रहे, त्रेता युग में भी कितने, तो वो स्मृति में है। स्मृति में आप जो ही फील करेंगे ना, देख रहे सतयुग में पहुंच गए, तो वैसे वाइब्रेशन चारों ओर फैलने लगता। तो ये जो है ना, ऐसे परम धाम में भी चले जाएं, परम धाम में भी फील करें बाबा और मैं, है ना, बाबा को देखना और अपने को। और अब वहां पहुंच के ये देखना कि बाबा के संकल्प क्या है। तो इस प्रकार इन स्वरूपों में खोना है। तो इससे क्या है, आपकी जो लिंक है ना वो टूटेगा नहीं, समझ रहे, लिंक टूटेगा नहीं। आप ये पांचों स्वरूप में से कोई एक स्वरूप ले के चलिए। जैसे मान लीजिए अभी आप फिक्स कर लीजिए, जैसे कोई बहुत ऐसा वर्क नहीं, आप यहाँ से किचन तक जा रहे हैं, तो किचन तक आप ऐसा संकल्प करिए, अंदर से स्मृति में लाइए कि मैं क्या हूँ, एंजल, फरिश्ता। तो कोई बाहर से देख नहीं रहा ना आपको, आप आराम से आप फील करिए, मैं लाइट के बॉडी में जा रही हूँ। तो आप देखिए यहाँ से वहां तक पहुंचे, क्या फील हुआ, क्या महसूस हुआ, है ना। कभी आप यहाँ से वहां तक अगर जा रहे हैं तो आप फील करिए कि हमको वहां तक जाना था, इतनी दूर तक मैं देवी के रूप में जाऊंगी या देवता के रूप में जाऊंगी, है ना। तो इस स्वरूप पे रहना, इसी को बाबा क्या कहते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराना। उसको ये केवल दोहराना नहीं कि मेरे सतयुग में इतने जन्म थे, त्रेता में इतने जन्म थे, द्वापर, नहीं, देखना उसको, फील करना उसको, महसूस करना, है ना। तो ऐसे जब कोई न कोई एक स्वरूप में रहेंगे ना तो लिंक टूटेगी नहीं। बाबा कहते हैं या तो बाबा को याद करो या जो मुरली है उसमें जो बाबा ने आज बताया उसको अनुभव करो, इस स्वरूप में खो जाओ, है ना। तो इस प्रकार ऐसे ही बाबा ने कहा ना, सूर्यवंशी पद के भी अधिकारी कौन बनेंगे, कब बनेंगे, क्या स्मृति में रखेंगे, श्रेष्ठ तकदीर, है ना, श्रेष्ठ तकदीर को स्मृति में रखेंगे ना। अगर हमारी क्या भाग्य है, श्रेष्ठ तकदीर मीन्स हमारा भाग्य है, हमारा क्या भाग्य है, ऊंच से ऊंच भाग्य क्या है, हमारा सबसे बड़ा भाग्य है, इसी समय है, वो पूरे कल्प में कभी नहीं होगा। अभी हमारा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य क्या है, भगवान मिला। सबसे बड़ा भाग्य क्या, भगवान मिला, है ना। तो पांडवों को दिखाते ना, पांडवों ने क्या कहा, मुझे सेना नहीं चाहिए, बस आप हमारे साथ हैं, है ना। तो भगवान साथ है, इससे बड़ा भाग्य तो नहीं है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि जब आप श्रेष्ठ तकदीर, हमारा जो भाग्य है ना, उसको जब हम याद करते हैं तो हमारी स्थिति स्वतः क्या बन जाती है, श्रेष्ठ बन जाती है, समर्थ बन जाती है, समर्थ स्थिति। और जितनी हमारी स्थिति समर्थ होगी ना, उतना हम क्या बनेंगे, सूर्यवंशी पद के अधिकारी बनेंगे, है ना। और मान लो आप माया के बस हैं, कभी क्रोध कर रहे हैं, कभी लोभ है, कभी मोह है, तो क्या हो गया, ये सूर्यवंशी पद से हम दूर जाते हैं। तो इसीलिए या तो कहते हैं या तो बाबा को याद करो, और बाबा को नहीं याद कर सकते हो तो कम से कम क्या करो, अपने तकदीर को याद करो, भाग्य को याद करो। आप कुछ नहीं कर सकते दिन में तो अपने भाग्य को याद करो, हमारी क्या क्या तकदीर है, है ना। और इसी प्रकार बाबा ने क्या कहा, सर्व पर रहम करो, तो क्या हो जाएगा, अहम और वहम दोनों ही समाप्त हो जाएगा, है ना। अहम में क्या हो जाता है, अहम में क्या होता है, मैंपन, कैसा अभिमान, अभिमान किसको कहेंगे, अभिमान, अभिमान क्यों होता है, और अभिमान या वहम, ये किस टाइप का होता है मालूम है। जब हम अपने लेवल में समझते हैं ना किसी को, तो हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं। आप उस लेवल से परे हो जाओ ना, जैसे मान लो छोटे छोटे 5-7 बच्चे खेल रहे हो, और उसमें छोटा कोई खिलौना रखा है, छोटी सी कार है, वो बच्चे खेल रहे 4-5, तो सभी बच्चे आपस में ये मेरा है मेरा, वो झगड़ा कर सकते हैं ना, मान लो झगड़ा हो जाए, मेरा है मेरा है। कोई बड़ा व्यक्ति वहां से गुजर रहा है 50-60 साल का, तो वो कहेगा क्या कार मेरी है, वो भी लड़ना शुरू करेगा क्या, वो तो सबसे शक्तिशाली है, चाहे तो अकेला छीन सकता है, लेकिन लेगा क्या वो, क्यों, वो क्यों नहीं लेता है, समझदार है। तो उसके देखो उसकी मैच्योरिटी है ना, बड़ा अपने को जब बड़ा समझता है ना तो बहुत बड़े हैं, तो बच्चे है ना। जैसे माँ है, माँ उसके दो बच्चे हैं, तो बच्चों की बहुत महिमा करे कि आपका बच्चिया चाहे आपकी बच्ची तो बहुत अच्छी है, बड़े अच्छे इसके संस्कार हैं, बहुत अच्छा गुण है इसके, तो माँ क्या कहेगी? माँ को ईर्ष्या होगी क्या, ये मेरी बेटी की महिमा कर रहा हो मेरा? होगा माँ को? माँ को क्या हो जाएगी, और खुशी होगी ना, है ना। तो जब हम कंपेयर करते हैं, उनके लेवल में आते हैं ना, तो ऐसा होता है। लेकिन इसी प्रकार जब माँ समझते ना, मैं माँ हूं, है ना, तो माँ जब कर समझती है तो माँ स्वतः उसके अंदर पालना के संस्कार जागृत हो जाते हैं। इसीलिए बाबा ने एक मुरली में कहा था ना, कोई माँ को ट्रेनिंग नहीं देना पड़ता है कि बच्चे को ऐसे ही होकर, नहीं, माँ के गुण स्वतः आ जाते हैं ना, कि कोई ट्रेनिंग देता माँ को, स्वतः आ जाता। वो सोए सोए भी माँ रहेगी ना, तो सोते समय भी सोचेगी कोई बच्चा का कोई अंग दब तो नहीं गया मुझसे, सोते समय भी नींद में भी संभाल करेगी बच्चे का, क्यों, उसके अंदर माँ के स्वरूप आ गया है ना। तो ऐसे अगर सर्व पर राम रखते ना, मैं देवी हूं, चाहे मैं देवता हूं, तो जो सर्व पर राम करने की भावना है, इससे क्या होगा, आम का कोई स्वभाव ही नहीं है क्या? आम का जो है उत्पन्न होने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि आप बहुत बड़े लेवल पे चल गए ना। तो कभी भी, इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, कहीं भी देखते हैं बाबा क्या कहते हैं, कंपेयर किससे करो, बाबा से, कभी भी इससे नहीं। बाबा कभी नहीं कहते कि मैं इनके जैसा बन जाऊं, मैं इनके जैसा बन जाऊं, वो कहते नहीं। हर एक का अपना अपना पार्ट है, उसमें कुछ खास है तो आप में कुछ और खास है, कोई चीज ऐसा है जो आप में है वो अन्य आत्माओं में नहीं है, तो आप कोई ना कोई चीज में आप बहुत विशेष हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अपनी विशेषता को भी जानना चाहिए हमें, हमारे अंदर क्या विशेषता है ना। तो इसीलिए हमें बाबा से ही कंपेयर करना है, यानी सर्व पर रहम करना है, सबके ऊपर रहम। तो बाबा कहते हैं सबके ऊपर अगर रहम करेंगे तो अहम भी खत्म हो जाएगा, वहम भी, जो डाउट्स होते हैं वो भी नहीं। तो इसीलिए हमें इस प्रकार से मिस बाबा की याद शक्तिशाली रखने के लिए, या तो हम बाबा को जब समय मिलता है तो याद करें, लेकिन अगर याद का समय नहीं है, हम कर्म कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो कोई न कोई एक स्वरूप का अभ्यास करें। जैसे घंटे दो घंटे में जो बाबा ने कहा, वो तो बिंदु बन गया, बिंदु बन के चिपक गए बाबा से, वो अलग है, वो तो करना है। लेकिन बीच में भी जो घंटा दो घंटा बीच में जो, वो भी किसी न किसी स्वरूप में, या तो फरिश्ता बन जाओ या देवी बन जाओ, इस स्वरूप में बन के करिए, फिर बहुत मजा आएगा। आपको कोई और दिखाई नहीं देगा ना, जैसे आप सोच रहे हैं कि मैं यहां से वहां तक जा रही हूं, मैं देवी हूं, तो आप अपने देवी के भान में खोए हैं, अपने देवता के भान में खोए हैं, तो आपको और किसी को देखने का टाइम मिलेगा क्या? तो इसीलिए या तो बाबा की याद में रहें, या इस स्वरूप में खो जाएं, तो आपका ये निरंतर योग में शामिल हो जाएगा, योग टूटेगा नहीं, और योग बहुत पावरफुल हो जाएगा। तो अभी टाइम हो गया है 11:15, पौने ग्यारह से 11 छुट्टी है ना, 15 मिनट का। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, आप लोगों का तो बहुत होता है, आप लोग तो रोज मुरली पढ़ते हैं। अलग तो बाबा हर एक को अनुभव कराता है, और बाबा ही, मैं तो देखता हूँ हर एक का। हाँ, तो उसको हमको शामिल करना है ना, अब वो याद है तो ये फील करना है कि जब वो इमली देख के आ जा सकता है तो हमारी बाबा की याद की क्यों नहीं आ सकती, भोजन में भी ना इतना आ जाता है, बहुत जरूरी है। और किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, कुछ पूछना तो एक मिनट, ठीक है, तो दो मिनट है, दो मिनट हम बाबा की याद में बैठते हैं। और दो मिनट कैसे बैठेंगे, मेरे शरीर का नाम बी के अनिल, हाँ अनिल भाई, और यहाँ एकोमोडेशन ऑफिस में सेवा देते हैं, ऐसे तो हम लगभग 27 साल के लगभग हुआ यहाँ समर्पित रूप से, बाकी ऐसे हम बनारस से हैं लोग, ठीक है, थैंक यू आप लोगों ने इतना ध्यान से सुना, आप लोगों ने ध्यान से, आप लोगों ने, नींद का समय है ये थोड़ा नींद का टाइम होता है, फिर भी आप लोग जगे हुए हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है, नहीं जगे हुए भी हैं, बुद्धि भी चला रहे हैं। ओके, ओम शांति।